वे ही भगवान सत्व गुण के द्वारा तो पालन करते हैं, रजोगुण के द्वारा संसार को बना पैदा करते हैं, तमोगुण के द्वारा लीन कर लेते हैं, और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनके द्वारा ये तरह तरह की चीजें बना लेते हैं। कार्य कर्ण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रिया श्रया बंधन्ति नित्यदा मुक्तम माइनम पुरुषम गुणा, और वे ही भगवान सारे संसार को बनाते हैं। उसमें से भगवान ने अपने में से जीवों को बनाया था, जीवों को इसलिए बनाया कि संसार भी है, जीव भी है और मैं भी हूं। मैं इन जीवों के साथ, इन संसार की सामग्रियों के साथ में खेलूं, मैं तो सामग्री दे हूं जीव को और जीव सामग्री दे दे मुझे। माने जैसे दो खिलाड़ी है, एक तो गेंद की ठोकर मारता है एक की तरफ, एक ठोकर मारता है एक की तरफ, ऐसे ठोकर मारते मारते खेलते दोनों खिलाड़ियों को सुख मिलता है। ऐसे ही भगवान ने बनाया था इसलिए कि ये जीव है, इन पदार्थों को मुझे देता रहे और मैं इस जीव को देता रहूं। लेकिन जीव ने क्या किया कि भगवान के दिए हुए पदार्थों को वो अपना मानने लग गया और भगवान का माने नहीं। अब वो वहां पर खेल रुक गया, भगवान का भी आनंद, अब भगवान तो आनंद स्वरूप है लेकिन जीव की ये दशा देख करके भगवान का भी खेल बंद हो गया और जीव ने वो गेंद अपने पास में रख ली, उसका भी खेल बंद हो गया। तो माइनम पुरुषम गुणा, अब वो है वो जो भगवान का ही अंश था, वो भगवान का अंश इस खेल कूद के खिलौने की सामग्री के अंदर ही खेलने लग गया, भगवान को भूल गया, इसलिए ये बंधन को प्राप्त हो गया। ये खास बात है बेटा नारद। तो महाराज जी बनाते कैसे हैं कि बनाते हैं, देखो द्रव्य को लेकर बनाते हैं, काल को लेकर बनाते हैं, कर्म को लेकर बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं कि भगवान के पास तीन गुण तो है ही, भगवान के पास तीनों गुणों की जो तीनों गुण, भगवान में तो सब प्रकार की शक्ति है। देखो दिवाली के समय में आप कई कई ऐसे फटाका देखेंगे, दिखता तो बहुत छोटा सा है और जब उसमें आग लगाते हैं तो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो कितने ही प्रकार के रंग उसमें से निकलते हैं, हरा पीला लाल सफेद कई प्रकार के रंग निकलते हैं। दिखने में वो इतना ही है लेकिन जो ही आग के साथ संपर्क होता है तब वो आगे जाकर बहुत बड़ा उसके अंदर में से चीजें निकलती है। ऐसे ही भगवान के अंदर अनंत शक्तियां हैं, उन अनंत शक्तियों में से इन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों को लेकर के काल के द्वारा उसमें भगवान क्षोभ पैदा करते हैं, कालाद गुण गति करे हैं, काल के द्वारा उन गुणों में क्षोभ करते हैं। जैसे दही रखा हुआ है उसमें मथानी लेकर के हम लोग उसका मंथन करते हैं तो उसमें से घी निकलता है, उसमें से छाछ निकलती है और उसमें से पानी भी निकलता है, तीन चीज निकलती है। इसी प्रकार से भगवान जब इस समय में प्रकृति में क्षोभ पैदा करते हैं तब गुणों के अंदर क्षोभ पैदा होता है, तो तीन गुण हो गए सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। घी तो है सत्वगुण के समान और छाछ है वो है रजोगुण के समान और पानी है वो है तमोगुण के समान। तो कालाद गुण व्यति करे, इस प्रकार से गुणों में क्षोभ पैदा होता है। फिर क्या होता है कि स्वभाव से उनका रूप रंग बदलता है, रूप रंग बदलता है तब एक महतत्व नाम का तत्व पदार्थ, एक पदार्थ पैदा होता है, वो महतत्व पैदा होता है जिसमें फिर भगवान अपनी शक्ति रखते हैं। तब उसमें से एक तो सत्व वाला अहंकार, एक राजस्व वाला अहंकार, एक तमोगुण वाला अहंकार, तीन प्रकार के अहंकार महतत्व में से पैदा होते हैं। फिर उस अहंकार में क्षोभ पैदा होता है, तब तामस अहंकार से पैदा होता है तब तो ये पंच महाभूत बनते हैं, राजस अहंकार से पैदा होते हैं तब बुद्धि इंद्रियां प्राण ये पैदा होते हैं, और सात्विक अहंकार पैदा होता है तब जाकर के ये देवता वगैरह ये बनते हैं। इस प्रकार से ये भगवान सृष्टि बनाते हैं और फिर क्या बनते हैं कि ये सब चीजें बनकर के ये सब एक अंडाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं तो फिर भगवान को कई वर्षों तक जल में रखते हैं, वर्ष पूग सहस्रांते, तब फिर भगवान को उन जीवों से फिर खेलने की इच्छा पैदा होती है। फिर अंडे में से अनेक प्रकार के जीव निकलते हैं और अनेक प्रकार के जीव निकल करके और वही भगवान के विराट रूप के रूप में प्रकाशित होते हैं। भगवान का विराट रूप है, आप देखो इतना ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक जितना ये ब्रह्मांड का विस्तार है ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। यस्य इह अवयवैर लोकान कल्पयन्ति मनीषिणः, जो नीचे के नीचे लोक हैं वो तो भगवान के चरण हैं और मध्य लोक है वो भगवान की नाभि है, ऊपर के लोक है वो भगवान के सिर हैं, भूर लोक है कल्पित है पद्भ्याम, ये भूलोक है, पृथ्वी लोक भगवान के चरण है, और भूवर लोक है ये भगवान की नाभि है, और स्वर लोक है वो भगवान का हृदय है, और महर लोक है वो भगवान की छाती है, और जन लोक है वो भगवान की ग्रीवा मान गर्दन है, तपोलोक है ये भगवान के दोनों स्तन है, और सत्यलोक है वो भगवान का सिर है जिसको ब्रह्मलोक भी बोलते हैं। ये सारा का सारा भगवान का कलेवर समझना चाहिए। कटितल है वो कटी और कमर है वो अतल है, और दोनों जांगे है वो वितल है, घुटने है वो सुतल है, पिंडलियां है वो तलातल है, गुल्फ है वो महातल है, और ये पंजे है ये रसातल है, और ठीक जो पिंडी बहुत बिल्कुल पैर की पगतली है वो पाताल है। ये सारा का सारा ब्रह्मांड है वो भगवान के अंगों के रूप में कल्पित है। ये शब्द दिया है कल्पयंती मनीषी ने, ध्यान देना इन शब्दों को, आगे जाकर परीक्षित पकड़ लेंगे। आगे जाकर इसी आठवें अध्याय में राजा परीक्षित प्रश्न कर लेंगे कि महाराज ये सृष्टि का जो रूप आपने भगवान के अवयवों से बनाया है, तो ये अवयव है इनकी कल्पना की गई है या ये वास्तव में ही वो चीज है। इन दोनों के विषय में उसको प्रश्न होगा, इसलिए याद रखना कि कल्पित बात कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि उस ब्रह्मांड में से मुख निकला तो अग्नि आकर बैठ गई, नाक निकला तो घ्राणेन्द्रीय और अश्विनी कुमार आकर बैठ गए, आंख निकली तो सूर्य आकर बैठ गए, और कान बने तो दिशाएं और श्रोत्रेन्द्रीय आकर बैठ गई। माने उस विराट पुरुष से जो जो अवयव निकले तो वो इंद्रियां भी आकर बैठ गई, उन इंद्रियों के देवता भी आकर बैठ गए। जब उनमें से त्वचा निकली तो स्पर्श भी आ गया और वायु भी आकर बैठ गई, है ना, वायु तो है देवता और स्पर्श है उनकी इंद्रिया, इस प्रकार से सब आकर के लिए बैठ गए। तो ये सारा का सारा विराट रूप बना है। पराभूते अधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमे, कहते हैं उनकी पीठ में जाकर के अधर्म बैठ गया। देखो आप लोग लोक में भी देख सकते हैं, कोई आदमी सामने पाप करता हो ना तो उसकी हिम्मत नहीं हो सकती पाप करने की, क्योंकि अधर्म है उसका स्थान पीठ है। कोई भी चोर भी होगा तो सब पीठ में चोरी करेगा, पीठ में चोरी क्यों करेगा कि सामने पाप का स्थल है, वो है ही पीछे, आंखों के सामने पाप हो नहीं सकता। तो ऐसी पराभूते अधर्म से तमसश्चापि पश्चिमे, अधर्म है वो उसके पीठ में जाकर बैठ गया, और ये नद और नदियां ये सब उनकी नाड़ियां हैं। उदरम विदितम पुंस है, इस प्रकार से भगवान के उदर में ये समुद्र आदि है, और हृदय है भगवान का, वो मन है वो भगवान का हृदय है, और ये जितना महत्त्व है ये भगवान की ज्ञान शक्ति है। और बेटा नारद, मैं तू शंकर ये जितने ऋषि मुनि गंधर्व अप्सर रक्षगण भूत प्रेत पिशाच जितने के जितने जीव है, ये सब के सब उसी में से ही पैदा होते हैं। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवत्च यत्, एक ही वाक्य में समझा देता हूं बेटा कि जितना जो कुछ है, जो हो गया भूतम, और जो भव्यम जो होने वाला है, और जो भवत माने इस समय है, ये सब का सब एक वो पुरुष ही है, इसके अलावा और किसी की भी सत्ता नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य रहता है, वो सूर्य अपने स्थान पर रहता है, दूर तक सबको प्रकाशित करता है, इसी प्रकार से वो विराट पुरुष है सबको प्रकाशित करता है। स अमृतस्य अभयस्य ईश है, वो अमृत का भी स्वामी है, अभय का भी स्वामी है, सब चीजों का वो स्वामी है। और क्या बतावे, अमृत क्षेम और अभय ये तीनों देने वाले जो ऊंचे लोक हैं, उन लोकों का भी वो स्वामी है। ये ब्रह्मचारी है और सन्यासी है और वानप्रस्थ है, ये ऊपर के उन तीनों जन लोग तप लोग महर लोग उन लोकों में जाते हैं, और भूर भ स्व इन तीनों लोकों में ये जो गृहस्थ में रहने वाले उनकी यहाँ इनकी दशा होती है। तो इस प्रकार से भोग और अपवर्ग ये दो मार्ग हुए, एक विद्या और अविद्या मार्ग, एक आवागमन का मार्ग और एक मुक्ति का मार्ग। इस प्रकार से दो मार्गों से जीव जाते आते रहते हैं, एक मार्ग से तो जाना आना बंद होता है, एक मार्ग से वो बराबर चलता रहता है। परंतु पुरुषस्तु उभयाश्रय, दोनों ही मार्गों का आश्रय है वो एकमात्र भगवान है। तो भाई मैं भगवान से पैदा हुआ, मैं भगवान को जान नहीं सका, मेरे मन में आई कि मैं यज्ञ करूं, तो बेटा यज्ञ की सामग्री कहां, भगवान में से ही तो मैं पैदा हुआ, और भगवान में से ही पशु पैदा हुए, भगवान में से ही घास फूस दूर्वा आदि पैदा हुए, भगवान में से ही मंत्र पैदा हो गए, भगवान में से ही देवता पैदा हो गए, इन सब को लेकर के मैंने पुरुषा अवयवी पुरुषावयवी रहते संभारा समृता मया, भगवान की सामग्री लेकर भगवान के लिए मैंने अर्पण कर दी और वो यज्ञ भी भगवान का, सामग्री भी भगवान की। तब मैंने सोचा कि ओहो, ये जीवों के कल्याण का सबसे अच्छा उपाय है कि ये भगवान की सामग्री मिलती है और ये भगवान के लिए ही मिलती है। पुरुषम यज्ञम तेनै व अयजम ईश्वरम, उसी की सामग्री से मैंने उसी का यज्ञ किया। तो ये मरीचि आदि तब से इस सृष्टि में भगवान के लिए ही सब कुछ करने लग गए। तो तुमने पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो, तो बेटा हम तो उसी की उपासना करते हैं। जो कुछ तुमने हमसे पूछा था उसका उत्तर दे दिया है। सार इतना ही है कि नान्यत भगवतः किंचित भाव्यम सद सदात्मकम, जो कुछ यहाँ दृश्य अदृश्य कार्य कारण नजर में आता है वो भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। ये बात मेरे अनुभव की तुम सत्य रूप से स्वीकार कर लो। और हे नारद, मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ, मैंने आज तक कभी झूठ का सहारा लिया नहीं है, मेरी वाणी में असत्यता नहीं है। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते। देखो ब्रह्मा जी ये बात बोलते हैं, इसका अर्थ भगवान की महिमा कितनी विचित्र है कि मेरी वाणी कभी भी झूठ का सहारा लिए नहीं है, आज तक मेरा मन झूठ तक पहुंचा भी नहीं है, मेरी इंद्रियां भी कभी भी असत मार्ग में गई नहीं है। तो मैं सत्य सत्य बात बताऊं कि मैंने उत्कंठित हृदय से भगवान के दिव्यादि दिव्य रूप का दर्शन किया है। बोलिए आनंद कंद भगवान। देखो हृदोत्कंठ बता धृतो हरि, ए हृदय के अंदर एक मेरे मन में बड़ी विचित्र उत्कंठा थी कि मैं भगवान को जानूं, उस उत्कंठा के कारण से मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। वही मैं तुमको ये सब बात बताता हूँ, इसलिए भाई मेरी बात को तुम सत्य मानो। मैं उन भगवान के चरणों का आश्रय लेता हूँ, वो आश्रय क्या है, भवत छिदम, संसार का छेदन कर देने वाले हैं, सबका वो भगवान के चरण मंगल करने वाले हैं। तुम हो, मैं हूँ और वामदेव आदि जितने ऋषि हैं, कोई भी ऐसे नहीं है कि जो उनको पूर्ण रूप से जान सके। दूसरी बात तो यह है कि बहुत से जीव तो उनकी माया से मोहित ही हो जाते हैं, उनके विषय में अवतारों के विषय में भी लोग तरह तरह से मोहित हो जाते हैं, लेकिन उन अवतारों की बातों को भी कोई प्रेम से सुनता है तो हे नारद, वो स्वयं भी अपने कल्याण को प्राप्त हो जाता है और दूसरों का भी कल्याण कर देता है। वही भगवान सृष्टि को उत्पन्न और नष्ट करने वाले हैं। और देखो नारद, वे भगवान विशुद्ध हैं, ज्ञान है, प्रत्यक्ष चैतन्या भिन्न है और सर्वत्र विराजमान है, आदि अंत से रहित है, निर्गुण है, नित्य है, अद्वय है। और हे ऋषि, हे नारद, बड़े बड़े ऋषियों ने अपने इंद्रियों को ठीक वश में करके उसी परमात्मा को उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये हमने बता ही दिया कि जितना विराट रूप है सब भगवान का ही है, स्वर्ग लोक है, खग लोक है, नृलोक है, लोकालोक है, गंधर्व है, विद्याधर है, चारण है, यक्ष है, राक्षस है, किन्नर है, ये सब के सब पितर है, दैत्येंद्र है, सिद्धेश्वर है, ये सब भगवान का ही रूप है। इसमें किसी प्रकार से इनमें कोई अंतर नहीं, भगवान से ही पैदा हुए, भगवत स्वरूप है। फिर भी भगवान जीवों को और ज्यादा आनंदित करने के लिए तरह तरह से लीला किए हुए हैं, उन लीलाओं के विषय में मैं तुमको बताता हूँ। अब वो लीला के विषय में बता रहे हैं कि भगवान क्या क्या लीला करते हैं। तो ध्यान देवे, सृष्टि के विषय में बता दिया, जीवों के विषय में बता दिया। जीव तो वे हैं कि जो भगवान के द्वारा बनाई हुई इस सृष्टि के साथ संबंध करते हैं, और सृष्टि वो है कि जो पैदा होती है और नष्ट होती है, और भगवान वे हैं जो इन दोनों के आश्रय हैं, दोनों के नियामक हैं, और दोनों का पालन करने वाले हैं, और दोनों को ही बनाने वाले हैं। फिर भी भगवान जो है सृष्टि अपनी तरफ से जो अवतार लेते हैं, वो अवतार न तो जीव के समान है न वो सृष्टि के समान है, वो अवतार भगवान का इन दोनों से निराला है। फिर भी वो अवतार कुछ समय के लिए प्रकट होता है, कुछ समय के लिए तिरोहित हो जाता है। ये सृष्टि के समान उत्पन्न और नष्ट होने के समान उनका अवतार का काम नहीं है। इसीलिए कहा कि जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य रूप है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि और जीव के विषय में बताकर अब भगवान के विषय में बता रहे हैं कि वे भगवान वराह रूप से अवतार धारण करके इस पृथ्वी की रक्षा किए हैं। वे भगवान सुयज्ञ रूप से अवतार लेकर देवताओं की रक्षा किए हैं। वे भगवान कर्दम के यहाँ कपिल रूप से अवतार लेकर संसार के कीचड़ में सने हुए जीवों को और एक विलक्षण ज्ञान के द्वारा, सांख्य ज्ञान के द्वारा धो धो करके स्वच्छ बनाए हैं। वे ही भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेकर के बड़ी बड़ी योग सिद्धियों को बता करके शांति स्थापना किए हैं। वे ही भगवान सनत कुमार आदि के रूप में इस संसार की रक्षा के लिए कि जो कि पहले प्राकल्प संकल्प प्राकल्प संप्लव विनष्ट मिहात्म तत्वम, पहले कल्प के नाश हो जाने के कारण जिस ज्ञान में परिवर्तन आ गया था, उस ज्ञान को जगाने के लिए सनकादि के रूप में जो पैदा हुए अवतार लिए हैं और लोगों को बनाए हैं, वे सनकादि भगवान ही है। चत्वारो मनवस्त था, ये स्वयं भगवान ने भी गीता में यही बात कही। जहां अपनी विभूति बता रहे हैं दसवें अध्याय में, वहां पर भी यही बात बताया कि सृष्टि में पहले जो चार सनकादि पैदा हुए, दसवें स्कंद में ये तृतीय स्कंद में सब बात आ जाएगी। तो कहते हैं वो सनत कुमार आदि भी मेरे ही रूप है। ब्रह्मा जी कहते हैं वो भगवान के रूप है। नर और नारायण के रूप में तपस्या के प्रभाव से ऐसा विचित्र काम किए हैं कि नारद ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमने देखा है कि कामदेव के आने पर शंकर आदि ने उनके ऊपर रोष किया है और उसको जला करके भस्म किया है, परंतु उसी कामदेव ने जब नर नारायण का अपराध किया है तो उसके ऊपर कोई भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि काम को वश में करने वाले तो बहुत हुए हैं, लेकिन क्रोध को वश में करने वाले केवल एक नर नारायण ही हुए हैं। स्वयं यदंतर अमलम प्रविशन विभेति काम कथम न पुनरस्य मनश्रयेत, ये नर नारायण की बात थी। और वे भगवान कितने दयालु हैं कि एक छोटे से बालक के सामने प्रकट हो गए। वे भगवान कैसे विचित्र है कि राजा वेन के शरीर में से पैदा हो गए, पृथ्वी के रूप में पैदा हो गए। भगवान ने यह नहीं देखा कि वेन जैसा दुष्ट व्यक्ति और उसका भी मरा हुआ शरीर, उसमें से मैं प्रकट कैसे होऊं। उनको कहीं पर भी प्रकट होने में लज्जा नहीं, क्यों कि वो वेन भी तो आखिर उनके स्वरूप के बाहर थोड़ा ही था, उन्हीं का ही स्वरूप था, तो वे उसमें से भी पैदा हो गए। ऋषभ देव जी के रूप में अवतार लेकर के नारद, उन्होंने ऐसी परमहंसचर्या की आदर्श की बात रखी है कि लोग उनको देख देख करके आज भी संसार की आसक्ति के त्याग का बहुत बड़ा साहस कर सकते हैं। और एक बार मैंने बड़ा भारी यज्ञ किया, उस यज्ञ में वेदों को चुराने के लिए हयग्रीव नाम का एक राक्षस आ गया। भगवान भी हयग्रीव बन करके और उस राक्षस का संहार करके वापस मुझे ये वेद लौटा दिए, तो मैं हयग्रीव भगवान को भी प्रणाम करता हूं। वे ही भगवान प्रलय के समय में इस सारी सृष्टि के जो बीज थे उन बीजों का नाश हो रहा था, तो मत्स्य रूप से अवतार लेकर सारी सृष्टि को बचाए हैं। निखिल जीव निकाय कहते हैं, अरे जब उनकी दयालुता पर विचार करते हैं तो आह कितने दयालु हैं, पापी की भी रक्षा करते हैं। वे महान निकृष्ट जीव हैं, नारकीय जीव हैं, उनका भी पालन करते हैं, उनको भी वो कृपा की दृष्टि से देखते हैं। तो मेरे मन में आया कि ओहो, भगवान अखिल जीव निकाय कहते हैं, सारे जीव समुदाय के एकमात्र आश्रय स्थल है। मैंने देखा कि समुद्र मंथन के समय में जिस समय अमृत निकलने की बात चल रही थी, वो मंदराचल पर्वत एकदम समुद्र के अंदर डूब ही रहा था कि भगवान ने 1,00,000 योजन माने 400 कोस के अंदर अपने शरीर को फैला करके मंदराचल पर्वत को धारण किए हैं और लोगों को अमृत पिलाया। बताओ, भगवान को अमृत की कहां जरूरत थी, लेकिन संसार को अमृत देने के लिए सृष्टि में सब जीवों की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया। वे भगवान नृसिंह रूप से बनकर के अपनी भक्त वत्सलता बताते हैं कि जो हमारे लिए कष्ट सहन करता है, उसकी रक्षा में हमको आधा पशु और आधा मनुष्य बनने में कोई संकोच नहीं होता। निपात के बिरदार नखई स्फुरंतम, और उन्होंने अपने जंघा पर रख करके हिरण्यकश्यप के जो विदीर्ण किए, छाती को विदीर्ण किए हैं, विदीर्ण करने पर भी उन्होंने यही बात सिद्ध की है कि हमारी भक्त वत्सलता कितनी व्यापक है। और भगवान कोई मनुष्यों की सुनते हो ऐसी बात नहीं है। देखो नारद, एक हाथी गया जल के अंदर, उसको एक ग्राह पकड़ रहा था, खींच रहा था, वो मरने वाला था, और उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल भगवान का नाम लिया कि हे भगवान आप हमको बचाओ, हे जगदीश्वर आप हमको बचाओ। इतने में भगवान ने आकर उसको बचाया। ऐसे ऐसे कृपालु भगवान, इतने शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान दयालु होकर के वहां पर प्रकट हो गए तो भाई हमारे मन में भगवान की दयालुता पर जब विचार आता है तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान। और तो और भगवान एक बार वामन बनकर के छोटे रूप बनकर के और बलि राजा के यहाँ गए, तो बलि राजा के यहाँ गए तो क्या शिक्षा दी भगवान ने? भगवान ने ये शिक्षा दी कि भाई जो व्यक्ति अपने धर्म में स्थित होता है उसके पास जाकर हमारी शक्ति से हम उससे कुछ नहीं ले सकते, हम भी उसके सामने मंगता ही बनकर के जाएंगे। ये भगवान ने बताया कि स्मांबा मने न जगरी त्रिपद छले न यांसा मृते पति चरण प्रभु भी न चाले। असुर था बलि लेकिन राजा बलि असुर था लेकिन भगवान ने औरों को मारा, ऐसे बलि को मारा नहीं, उसके सामने जाकर याचना से ही राज्य लिया। तो बताया है कि जो व्यक्ति अपने धर्म में स्थित होता है उस व्यक्ति का भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये भगवान ने धर्म की महिमा के लिए ऐसा किया है। और दूसरी बात क्या बतावे, तुमको तो मालूम ही है कि भगवान हंस रूप से अवतार लेकर के तुम लोगों को जो दिव्याति दिव्य ज्ञान दिए हैं, जो हंस गीता है, ध्यान से सुने, भागवत के एकादश स्कंद में जहाँ हंस गीता आती है, हंस रूप से बने हुए भगवान सनकादिकों को उपदेश देते हैं, वहां पर तो आया है कि सनकादिकों के सामने भगवान प्रकट हुए, परंतु आदि पद से यहाँ नारद का भी ग्रहण होगा, वहां नारद जी भी मौजूद थे। वहां पर पदों में ये बात नहीं आती, बहुत सी बातें तात्पर्य से ली जाती है। यहाँ स्पष्ट बता ही रहे हैं ब्रह्मा जी कि देखो नारद, हंस बनकर के तुम लोगों को उपदेश दिए थे ना, इस संवाद से सिद्ध होता है कि सनकादिकों के वहां हंस गीता को नारद जी ने भी सुना था। वे भगवान धन्वंतरी बनकर के सब लोगों को निरोगता प्रदान करते हैं, परशुराम बनकर के वे वेद पद से रहित होने वाले ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले जो क्षत्रिय थे उन क्षत्रियों का उन्होंने संहार किया 21 बार, और वे ही भगवान इक्ष्वाकु वंश में अवतार लेकर के रावण आदि का वध किए हैं और दूर दूर तक अपनी विजय पताका फैलाए हैं। अब देखो ध्यान से सुना, अब भगवान के लिए कृष्ण अवतार की लीला बता रहे हैं। कृष्ण अवतार की लीला में भविष्यत काल है, माने और मैं तो बताया कि भगवान ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, और यहां बता रहे हैं करिष्यति, ऐसा करे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक हूब लीला है ब्रह्मा जी के सामने, लेकिन भविष्यत काल है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यही है कि भगवान की कुछ लीलाओं को हम भूतकाल में रखते हैं, कुछ काल को भविष्यत काल में रखते हैं, तो इसका अर्थ भगवान सब कालों में सब लीला वाले हैं। अरे भाई ऐसा किया ऐसा कहने से तो भूतकाल पवित्र होगा, अब भविष्यत को भी तो पवित्र करना है, इस कारण से भविष्यत काल के लिए बोल रहे हैं कि जब पृथ्वी राक्षसों के द्वारा आक्रांत होगी तब भगवान से प्रार्थना करेगी, तब भगवान बलराम जी को साथ में लेकर यहाँ अवतार लेंगे, अवतार लेंगे जब बहुत छोटे से बच्चे होंगे तो वे पूतना को मार देंगे और फिर वे शक्तासुर का उद्धार कर देंगे। यमला अर्जुन का उद्धार करने के बाद यमुना जी का जो जहरीला जल है उस जल को वे शुद्ध बना देंगे और उस कालिये नाग को यमुना नदी से बाहर निकाल देंगे और उसको यमुना नदी को शुद्ध कर देंगे। दावाग्नि के अंदर जले हुए अपने अपने साथियों को और ब्रजवासियों को भी बचा लेंगे। इसी प्रकार से माता को अपने मुख के अंदर संपूर्ण त्रिलोकी का दर्शन कराएंगे। नंद बाबा के सामने एक बार वरुण जी का कोई पाश होगा, माने वरुण देवता के द्वारा वो पकड़ लिए जाएंगे, तब नंद बाबा को छुड़ा देंगे। ब्रज के अंदर खूब जोर से बरसात होगी तो इंद्र का प्रकोप होगा, तो उस समय में सारे ब्रज की वे रक्षा करेंगे। और तो और एक दिव्याति दिव्य और लीला होगी भाई, वो लीला तो ऐसी है कि जो केवल भगवान और भगवान के अतिशय प्रेमी है वही उस लीला के अंदर सहभाग होंगे। क्रीडन वने निश निशा कर रश्मि गौरियाम रासोन्मुख कलपदायत मूर्छितेन उद्दीपित स्मर रुजाम ब्रजम भृत बधूनाम हर्तुर हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। रात्रि के अंदर चांदनी रात्रि के अंदर भगवान हजारों हजारों गोपियों के बीच में जब बांसुरी बजाकर सारे गोपियों को मोहित करते हुए दिव्यादि दिव्य रास करेंगे, वो तो भाई लीला भगवान की अनुपम होगी, बड़ी दिव्य होगी, ऐसी लीला करेंगे। और उसके बाद प्रलंब है, खर है, दुर्दुर है, इन सब का भी नाश करेंगे। तरह तरह की लीलाओं को करने के बाद वे उद्धव जी को परम ज्ञान दे करके और फिर वे अपने धाम में चले जाएंगे। ऐसी लीला कृष्णावतार में होगी और वे ही भगवान व्यास के रूप में वेदों का विभाग करेंगे, जो कि वेदद्रुम बहुत दिनों से छिन्न भिन्न था उसको ठीक ढंग से व्यवस्थित करेंगे। और इसी वेद को जब लोग अर्थ के तात्पर्य को न समझ करके अनर्थ को वे स्वीकार करने लगेंगे, तब भगवान ही वहां पर वेद का खंडन करेंगे। भगवान देखेंगे भी हमारे श्वासों से पैदा हुआ, ब्रह्मा के श्वासों से मुख से पैदा हुआ ये वेद है, इस वेद का खंडन भी, वेद का खंडन भी तो भाई भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो वे उपधर्म की बात कहेंगे, वे बुद्ध रूप से अवतार लेंगे। लोग कहते हैं तुम बुद्ध को भगवान क्यों मानते हो? अरे भाई कई कई बार ऐसा होता है कि हमको हमारे घर में भी पुलिस वाले जाने नहीं देते हैं, हम कहीं बाहर गए हुए और पता नहीं चले और अंदर कोई घर में विस्फोट हो रहा हो तो पुलिस वाले कहेंगे आपका घर है लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? वो हमारी सुरक्षा के लिए हम नहीं जा सकते, हमारी रक्षा के लिए बोलते हैं। ऐसे ही भगवान स्वयं वेद के चारों तरफ खड़े होकर, नहीं भाई अभी तुम वेद मत पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? अरे इसका अर्थ का अनर्थ हो रहा है। उस समय में बुद्ध भगवान अवतार न लेते तो इतनी हिंसा व्यापक हो जाती, वेदों में लोगों के कर्मकांड में इतनी श्रद्धा हो गई थी और उसमें हिंसा की इतनी प्रधानता हो गई कि वेद का वास्तविक तात्पर्य लोग समझ नहीं सके। तब जाकर के भगवान ने बुद्ध रूप से अवतार लेकर कहा, अरे वेदों में क्या पढ़ा है, वेदों में कुछ नहीं रखा, वेद वेद मत पढ़ो। उस समय में ऐसी ऐसी युक्तियों की बातें कही तो लोगों की वेदों में रुचि नहीं रही। तो भगवान का कार्य वेदों से अरुचि पैदा करने का जो थोड़ी देर के लिए हुआ, वो इसलिए हुआ कि असली तात्पर्य समझे बिना लोग अपना अनर्थ न कर ले। वे ही भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। जब स्वाहा स्वधा इन सब की आवाजें बंद हो जाएंगी, यज्ञ वगैरह बंद हो जाएंगे, तब भगवान अवतार लेंगे। सर्गे तपो हम ऋषयो नवये प्रदेशा स्थानेश धर्म मखमन वरमरावधीशा। कहते हुए स्वाहा सुधा की आवाज नहीं होगी, राजा लोग कहेंगे कि नहीं नहीं धर्म की बात मत करना, यहाँ धर्म की बात करोगे तो गिरफ्तार हो जाओगे, धर्म की बात करोगे तो मृत्युदंड मिलेगा। ऐसी ऐसी जब बातें होने लगेंगी तब भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और अवतार लेकर के और दुष्टों का संहार करेंगे। इस प्रकार से भगवान अवतार लिया करते हैं बेटा। परंतु ये बात तुम निश्चित मानो कि सर्ग के अंदर माने सृष्टि की उत्पत्ति के अंदर भगवान तपस्या को स्वीकार करते हैं, मुझे स्वीकार करते हैं, ऋषियों को बनाते हैं, प्रजाओं को बनाते हैं, और जब सृष्टि हो जाती है तब धर्म को स्वीकार करते हैं, यज्ञ को स्वीकार करते हैं, मनुओं को स्वीकार करते हैं, देवताओं को स्वीकार करते हैं, और जब सृष्टि का नाश करना होता है तब अधर्म को लेते हैं, क्रोध को लेते हैं, शिव को लेते हैं, इनको लेकर के और तरह तरह से वे लीला करते हैं। देखो भगवान की महिमा को हे नारद कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है कोई आकाश के तारों को गिन लेवे, हो सकता है कोई मिट्टी के कणों को, संपूर्ण पृथ्वी पर जो मिट्टी है उसके कणों को गिन लेवे, लेकिन भगवान के अवतारों को बेटा कोई नहीं गिन सकता है। आज तक मैं देख रहा हूं शेषो धनापि समवस्थिति नास्ति पारम, शेषनाग के हजार मुख हैं और उनके पास कितनी बुद्धि है, वो भी भगवान का गुणगान गाते गाते हजारों मुखों से अपनी बुद्धि से गाते गाते वे भी पार नहीं पा सके। तो बेटा हम लोग कहां तक पार पाएंगे? हम तो यही बात जानते हैं कि भाई भगवान बहुत दयालु हैं। जिन लोगों ने इस शरीर में अहंता और ममता नहीं की है वे माया से पार होकर भगवान की दया को प्राप्त हो गए हैं। और बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने और दूसरे लोगों ने अच्छे अच्छे राज्य का त्याग करके जो भगवान की शरण स्वीकार की है, उससे यही सिद्ध होता है कि जीव का एकमात्र आश्रय भगवान की भगवान ही है और दूसरा कोई नहीं है। शाश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम, भगवान एकदम शांत है, सबको अभय देने वाले हैं, सबके ज्ञान को जगाने वाले हैं, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, बिल्कुल निर्विकार है, अत्यंत शुद्ध है और कार्य और कारण से बिल्कुल परे है। वहां पर किसी प्रकार भी शब्दों की गति नहीं है और किसी प्रकार से वहां कोई कर्म का फल पहुंचता नहीं है। माया भी जिनके सामने सती साध्वी पतिव्रता के समान लज्जा का अनुभव कर केवल भगवान के इशारे की ओर ही देखती रहती है, ऐसे भगवान हे नारद तुम्हारे द्वारा और मेरे द्वारा प्रापणीय है। तद्वई पदम भगवत परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद् विदुरजस्य सुखम विशोकम वही भगवान का परम स्थान है, जहाँ इस जीव को नित्य निरंतर आनंद का अनुभव होता है। देखो, किसी आदमी को प्यास लगी है और वो कुआं खोदने का प्रयास करता हो, किसी ने कहा कि अरे अरे कुआं क्या खोदते हो, क्यों खोदते हो कुआं, भाई प्यास लगी है तो क्या करें, तो वही कुआं खोद रहे हैं पानी के लिए, अरे कुआं वा मत खोदे, हमारे पास जल डालो पी लो, तो उस समय में फावड़े को गैती को छोड़ करके वो सीधा पानी पिएगा। इसी प्रकार से बड़े बड़े ऋषियों ने मुनियों ने देखा गया हो, परमात्मा का अनुभव तो हमारे अंदर ही होने वाला है, सहज में ही होने वाला है, तो सब साधनों को छोड़ करके वे अपने में ही उस निरंतर प्रवाहित होने वाले महान आनंद को प्राप्त हुए और उससे अपने जन्म जन्मांतर की जितनी ज्वालाएं थी उनको उन्होंने शांत किया है। ऐसे भगवान सबको शांति देने वाले हैं, वे समस्त कल्याणों के स्वामी हैं। और देहे स्वधातु युगमे अनुविशीर्यमाणे व्योमे वतत्र पुरुषो न विशीर्यते जय, जैसे पुरुष के मर जाने के बाद किसी के शरीर शांत हो जाने के बाद तदगत आत्मा नष्ट नहीं होती है, इसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड के नष्ट हो जाने के बाद भी जो परमात्मा नित्य निरंतर सदा सर्वदा विराजमान है, उनका कभी भी नाश नहीं होता, आकाश जैसे नष्ट नहीं होता है, ऐसे परमात्मा नष्ट नहीं होते हैं। तो आकाश कैसे, ये मकान नष्ट होता है तो आकाश नष्ट नहीं होता, ऐसी ब्रह्मांड नष्ट होता है तो भगवान नष्ट नहीं होते, इस प्रकार से नित्य निरंतर रहने वाले हैं। उसके विषय में तुमने पूछा जो मैंने तुमको बताया है, और हे नारद मैं तुमको क्या बताऊं, मैंने तुमको सामान्य बात नहीं बताई है, अरे सृष्टि जीव और जगत इन तीन के विषय में कह दिया तो इसका अर्थ है मैंने तुमको भागवत सुना दी है, इसी का नाम भागवत है, और तो और यही भागवत मुझे भगवान ने सुनाई थी, यह मैंने बहुत संक्षेप में तुमको सुनाया है, तुम एतद विपुली करो। नारद जाओ, हमने तुमको ये बहुत संक्षेप में सुनाया, अब तुम इसका सृष्टि में विस्तार करो। किस लिए विस्तार करो, याद रखो कि लोगों की भगवान में भक्ति होवे, ऐसा मन में संकल्प करो। नारद संकल्प में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, जैसे एक छोटे से छोटे बट के वृक्ष के अंदर कितनी शक्ति होती है, कितना बड़ा वो वृक्ष पैदा कर देता है, कितनी छिपी हुई शक्ति है उसमें, उस वृक्ष से कितने वृक्ष पैदा हो सकते हैं, इसी प्रकार से संकल्प में एक महान शक्ति है। तुम संकल्प करो कि बेचारे कलयुग के प्राणी हैं जो कि काम धंधों में फंसे हुए हैं, कर्मों के कीचड़ में बिल्कुल सन गए हैं, ऐसे लोगों को भगवान की भक्ति कैसे मिले, वो भक्ति मिलेगी भागवत को सुनाने से, ऐसा संकल्प करो और इसी वीणा को लेकर जाओ और तुम संसार में संतप्त लोगों को ये भागवत सुनाओ। निश्चित मानो कि ऐसी भागवत सुनने से लोगों का कल्याण होगा, उनका कीचड़ दूर होगा और लोग सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शिण्वतः श्रद्धया नित्यं माया आत्मा न मुह्यति। तुम भगवान परमेश्वर की ऐसी महिमा का वर्णन करोगे तो कोई जीव इस माया से मोहित नहीं होगा, बहुत आसानी से प्रेम पूर्वक इन मायापति भगवान की कथा को सुनने से आसानी से वे संसार को तर जाएंगे। नारद जाओ और संसार का कल्याण करो।
भगवत प्रीत्यर्थ कही जाने वाली श्रीमद् भागवती कथा के पाक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय से कथा प्रारंभ की जा रही है। द्वितीय स्कंद आत्म कल्याणार्थी जिज्ञासुओं के लिए, साधकों के लिए तरह तरह के साधनों को बताने वाला है। श्रीमद् भागवत के परम वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मंगलाचरण के साथ श्रीमद् भागवत को इसी द्वितीय स्कंद से प्रारंभ किया है। द्वितीय स्कंद के 4 विभाग किए जाते हैं। उनके अंतर्गत कल बताया था कि सृष्टि की उत्पत्ति और उस सृष्टि में जीवों का पैदा होना और भगवान का आविर्भाव होना ये कितना आवश्यक है। यदि सृष्टि न हो तो यह प्रलय में जीव पड़ा रहेगा, सोया रहेगा, और जैसे सोए हुए प्राणी के द्वारा कुछ भी कार्य नहीं होता, इसी प्रकार से सृष्टि के बिना इस जीव का कल्याण रूपी कार्य भी सिद्ध नहीं होता। तो भगवान की ये परम इच्छा है कि जीव का कल्याण हो। जैसे माता सोए हुए बालक को जगाने से पहले बालक के लाड प्यार की सामग्री, खाने पीने की पूरी सामग्री एकत्रित करती है और उसके बाद बड़े प्यार से अपने नन्हे मुन्ने को जगाती है, जगाने के बाद उस बालक के लिए सारी व्यवस्थाओं से उसे पोषित करती है, इसी प्रकार से भगवान ने सृष्टि को बनाया कि जीव इस सृष्टि में आकर परम आनंद को प्राप्त कर ले। और फिर भी यदि जीव कहीं भूल करता है तो भगवान अवतार लेकर तरह तरह की लीलाओं से जीव को इसी आत्म कल्याण की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। नारद ब्रह्मा के संवाद के अंतर्गत भगवान की पावन लीलाओं का विशद वर्णन हुआ। वर्णन करते करते ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे, देखो नारद, भगवान की लीलाओं का इस संसार में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। बेचारे अज्ञानी जीव तरह तरह से कष्ट पा रहे हैं, उनको छुटकारा दिलाने के लिए, कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की कथा के अलावा दूसरा कोई उपाय प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि कथाओं को सुनने से लोगों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम पैदा होगा और यही प्रेमांकुर आगे जाकर जीव का कल्याण करने वाला होगा। तो तुम्हें अपनी संकल्प शक्ति से इस श्रीमद् भागवत का विस्तार करना चाहिए और संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए इसे सुनाना चाहिए। गंगा तट पर प्रायोपवेश के लिए बैठे हुए श्री परीक्षित जी महाराज अब आगे सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि आहा, ये कितना विचित्र आख्यान है। संतों का संकल्प है कि जीवों का कल्याण हो, भगवान का संकल्प है जीवों का कल्याण हो, क्या दिव्य उनके संकल्प है। हे गुरुवर, बताइए कि ब्रह्मा जी के द्वारा उपदेश को सुनने के बाद नारद जी ने किन किन को ये कथा सुनाई है। ये निश्चित बात है कि संसार का जितना भी मैल है, अमंगल है, वो अद्भुत पराक्रम भगवान की कथा से दूर हो सकता है। और जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनते हैं उनके हृदय में आकर भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। प्रविष्ट कन कर्ण रंध्रेण, भगवान को कहां से बैठावें कि कानों के छिद्र से भगवान को बैठावें अपने हृदय में। जैसे किसी व्यक्ति का दरवाजा बंद है और घर में घुसना बहुत जरूरी है तो देखते हैं ऊपर कोई जालदान तो नहीं है, यदि जालदान है तो वहीं से तोड़ताड़ के अंदर जाते हैं। ऐसे ही जिन्होंने अपने क्रियाकलापों में और दूसरे व्यवहार में भगवान से वैमुख्य प्राप्त कर लिया, परंतु किसी प्रकार से वे भगवत कथा में आ गए तो भगवान देखते हैं कि और तो कोई उपाय नहीं दिखता, ये कान रूपी जालदान है, इसी के द्वारा अंदर घुसो और अंदर जाकर विराजमान हो जाते हैं। तो माने भगवान की कथा सुनने वालों के हृदय में भगवान स्वयं आकर विराजमान होते हैं, ये भगवान की बड़ी विचित्र कृपा है। ऐसी कथा को उन्होंने किस किस से कहा? दूसरा मेरा प्रश्न है, आपने बताया है कि ये जो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति केवल प्रकृति से निर्मित तत्वों की होती है, जीव ऐसा तत्व नहीं है कि जो प्राकृत पदार्थों के समान पैदा होता हो। इधर आप कहते हैं कि जीव को शरीर आदि के साथ संयोग करना होता है, तो एक तरफ तो इसका शरीर आदि से संबंध नहीं है ये बात कहते हैं, और दूसरी ओर जीव आदि को अपने शरीर आदि के साथ संबंध प्रतीत हो रहा है। अब इस बात को हम कैसे अलग अलग जाने? तो यदृच्छया हेतुना वा, ये कोई जीव का देहादि के साथ संयोग होना कोई स्वाभाविक है या आपातः संयोग होता है, अथवा इन दोनों के संयोग का कोई एक कारण है, ये आप हमें बताइए। तीसरा हमारा प्रश्न है, आपने विराट जगत के विषय में बताया तो है कि इस प्रकार से ये पृथ्वी भगवान का चरण है, भूलोक घोरलोक और स्वरलोक, इन तीनों लोकों से तथा और लोकों से भगवान के अंगों का निरूपण किया है कि भगवान भी क्या जीवों के समान शरीर धारण करते हैं, अथवा इन बने हुए सृष्टि के रूप में हमने भगवान के अंगों की कल्पना की है। कल्पित वस्तु एक ही होगी, या तो बने हुई सृष्टि में भगवान के अंगों की कल्पना की, या भगवान के अंगों में हमने सृष्टि की कल्पना की। कल्पित दो तो चीज नहीं हो सकती, तो इन दोनों में से वास्तविकता क्या है ये हमको समझाइए। यावान कल्प विकल्पो वा यथा कालोनुमीयते, आपने कहा है कि समय पाकर सृष्टि का प्रलय होता है, समय पाकर इसका सर्ग होता है, तो ये समय किस किस प्रकार से बंधा हुआ है, काल की गति हमको समझाइए। और ये पृथ्वी कितनी विशाल है, पाताल कैसा है, दिशाएं कितनी दूर तक फैली हुई है, नदियां समुद्र, इनका आप हमको विस्तार के साथ वर्णन सुनाइए। मनुष्यों का साधारण धर्म क्या है, विशेष धर्म क्या है, भगवान के पूजन की विधि क्या है, सांख्य योग की विधि क्या है, संत महापुरुषों का कारण शरीर के साथ जब संबंध विच्छेद होता है तो उसका क्या रूप बनता है, इस प्रकार से सृष्टि का सर्ग का स्वरूप क्या है, और विक्रम है प्रतिसंक्रम है, और वापिस ये सृष्टि लीन होती है प्रलय की ओर जाती है, तो उसका प्रलय का होना किस कैसे होता है, आत्मा का बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ये आप हमको समझाइए। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान माया विनोद से इस संसार को बनाते हैं, विक्रीडति आत्म माया, परंतु वे भी भगवान सब कुछ करते हुए भी सबके साक्षी की तरह से रहते हैं, साक्षीवद विभू। ये कितना आश्चर्य, कैसा वैशिष्ट्य, कैसा ऐश्वर्य है भगवान का, ये आप हमको बताइए। आपके अलावा दूसरा और कौन हमको बता सकता है? महाराज आप हमारे खाने पीने की चिंता न करें, भूख प्यास की चिंता न करें, पिबतो अच्युत पीयूषम, ये जो आप कथा कह रहे हैं ये कथा क्या है, साक्षात भगवत अमृत है, भगवत स्वरूप जो अमृत है, अमृत स्वरूप जो भगवान है, वे ही परस्पर में अभिन्न होकर के मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे किसी प्रकार से ब्राह्मण के शाप की चिंता नहीं है, मैं तो आपके श्रीमुख से भगवान के विषय में ये सब कुछ सुनना चाहता हूँ, और नमे असवय परायंती, मेरे प्राणों को भूख प्यास से कोई कष्ट नहीं है, अमृत जो आप पिला रहे हैं। परीक्षित की ऐसी सीधी सादी जिज्ञासा को सुनकर के ब्रह्मरातो वृषम प्रीत विष्णुराते न संसदी, स्वयं ब्रह्मरात सुखदेव जी महाराज विष्णुरात के इन प्रश्नों से वृषम प्रीत बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए कि परीक्षित तुमने ऐसा प्रश्न करके हमको जाने कहां कहां तक तुमने घुमा दिया है, कितनी कितनी बातें याद आई है, अहो ये ब्रह्म संमित जो भागवत पुराण है उसका एक साथ मेरे मन में उदय हो गया है, ये बहुत ही श्रेष्ठ बात है। तो राजन अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। अब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। सबसे पहले उत्तर इस बात का दिया जाएगा कि ये जीव किस प्रकार से शरीरादि से अलग है और कैसे शरीरादि के साथ मिला हुआ है, और उसके बाद ब्रह्मा जी की और आगे की लीलाओं को कहेंगे। अब सुखदेव जी महाराज प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि आनुपूर्वेण तत्सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे, जैसे क्रम से प्रश्न किया है उस प्रश्न से उस क्रम से उत्तर नहीं मिलेगा, वह प्रस्ताव रूप से माने प्रसंग के अनुसार उनका उत्तर दिया जाएगा, आनपूर्वी के रूप में नहीं है। तो ये जो प्रश्न किया है कि ये जीवात्मा शरीर के साथ संबंध करने वाला है या नहीं है, उसके विषय में सबसे पहले उत्तर देते हुए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आत्ममायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुरिवांजसा। वास्तव में जीव का शरीर के साथ संबंध नहीं है। जीव को यदि उसकी अनुभव की दृष्टि से बताया जाए तो वह शरीर से पर है, शरीर से श्रेष्ठ है, यह उसका अपना अनुभव बताता है। परंतु जैसे सोने वाला व्यक्ति जब तक जगता नहीं है तो निद्रावस्था में स्वप्नावस्था में जो उसे स्वप्न प्रतीत होता है वो स्वप्न को सच्चा मानता है, और स्वप्न को सच्चा मानकर उसमें सुखी और दुखी होता है। इसी प्रकार से इस बहुत रूप वाली सृष्टि में जब ये जीव घुल मिल जाता है तो वो स्वयं को भी बहु रूप है इवा भाति, अपने को भी बहुत रूप वाला मान लेता है। इससे उसकी महिमा लुप्त हो जाती है, वह गुणों में रमण करता हुआ किसी को मैं मानता है और किसी को मेरा मानता है। ये मैं का संबंध और मेरे का संबंध जब तक जीव के साथ है तब तक राजन तुम्हारे समान उसके मन में यही प्रश्न होता है कि इसका शरीर आदि के साथ संबंध है या नहीं है। और जब जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और वो अपनी महिमा में स्थित हो जाता है तब गत सम्मोह है, मोह नष्ट होने के कारण उसको ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि शरीर के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। यह जीव का और शरीर आदि का सृष्टि का संबंध मैंने बताया है, और इसी आत्म तत्व की विशुद्धि के लिए माने जीव में जो दोष आपाततः दोष आ गए हैं उसी दोष को दूर करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना लोक दिखाया, अपना रूप दिखाया। ब्रह्मणे दर्शयन रूपम अव्यलीक व्रताद्रित, कारण कि ब्रह्मा जी ने भी भगवान के लिए बड़ा श्रेष्ठ तप किया और भगवान को भी रूप दिखाना पड़ा ब्रह्मा जी को, इसलिए कि सारे जीवों का प्रतिनिधि बना हुआ ये ब्रह्मा है और ब्रह्मा के बहाने से भी सारे जीवों को भगवान बताना चाहते हैं। कहते हैं वो ब्रह्मा की बात है कि ब्रह्मा जी की जब नाभि कमल से उत्पत्ति हुई तब इस सृष्टि को कैसे बनाया जाए इस विषय में ब्रह्मा जी मोहित हो गए। प्रपंच निर्माण विधिर यया भवेत, वो उनको दृष्टि नहीं मिली जिससे इस प्रपंच का निर्माण किया जा सके। वो बिचारे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि मैं सृष्टि को कैसे बनाऊं। इतने में ही आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने दो अक्षर बोले, एक तो तय और एक प, माने तप, तपस्या करो। तो देखा कि ये बोलने वाला कौन है, तो जहां तक ब्रह्मा जी विचार कर सकते थे विचार किए, लेकिन बोलने वाले का कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। तो मन में विचार किया कि बोलने वाला चाहे कोई भी हो, लेकिन बोला हुआ वाक्य उसका बहुत यथार्थ है। तपस्युपादिष्ट इवाद अधे मन, उन्होंने विचार किया तपस्या करनी चाहिए। तो ये तो हुए 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के लिए बैठ गए और उन्होंने तपस्या की। उन्होंने वायु को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया और सारे संसार में अपने तपस्या का प्रभाव दिखाते हुए तपस्या में बैठ गए। तब भगवान उनके सामने प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट होकर के उस भगवान ने अपना लोक दिखाया, बैकुंठ लोक है, दिव्याति दिव्य लोक है, वो लोक ब्रह्मा जी को भगवान ने दिखाया। परीक्षित, वो ऐसा दिव्य लोक है कि जहां किसी प्रकार से किसी भी क्लेश की संभावना भी नहीं है, क्लेश का अनुमान भी हम नहीं लगा सकते। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण और इनका मिश्रित कोई रूप वो भी वहां नहीं है, और जितने जितने भगवान के वहां पार्षद है वो भी साक्षात भगवत स्वरूप है। सर्वे चतुर्बाहव, सब चार भुजा वाले हैं, बहुमूल्य मणियों से जड़ित उनके मुकुट है और बड़े श्रेष्ठ उनके पास में आभूषण है, उनको पहरे हुए हैं, भगवान को चारों तरफ से घेरे हुए भगवान की वे स्तुति कर रहे हैं। और लक्ष्मी जी भी तरह तरह से भगवान के भक्तों की स्तुति को सुन रही है, और उस लोक के अंदर लक्ष्मी जी अबाद रूप से इधर उधर घूमती है। अनुगैर विगीयमाना प्रियकर्म गायती, और वे भी अपने प्रियतम का मन लेने के लिए, प्रियतम के मन को आनंदित करने के लिए गा रही है। ऐसा जब दिव्य लोक देखा ब्रह्मा जी ने और ये देखा कि सुनंद नंद प्रबल अर्हण इत्यादि श्रेष्ठ पार्षद भगवान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, सबके चेहरे पर अपार प्रसन्नता है और भगवान अपने भक्तों के बीच में बैठे हुए बड़े विलक्षण आनंद का संचार कर रहे हैं। प्रसन्न हासा अरुण लोचनाननम, भगवान का मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ है, नेत्र उनके खिले हुए हैं, क्रीट कुंडल धारण किए हुए हैं, भगवान ने धारण किए हैं, पीताम्बर पहन रखा है, दिव्य आसन पर वो बैठे हुए हैं और भगवान 25 शक्तियों के साथ में वहां पर विराजमान है। ये 25 शक्तियां ही सृष्टि के कारण में मानी गई है, तो वे अपने 25 शक्तियों के साथ वहां पर विराजमान है। उनको देख करके ब्रह्मा जी के हृदय में अपार हर्ष पैदा हुआ और ब्रह्मा जी के नेत्रों से टप टप करके आंसू गिरने लग गए। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में जा गिरे और भगवान के सामने स्तुति सी करने लगे, उनके सामने कुछ बोलने लगे, लेकिन उनसे कुछ बोला नहीं गया। तब भगवान और ज्यादा मुस्कुरा करके ब्रह्मा जी के हाथ को अपने हाथ में लिया। ये देखो, हाथ मिलाने की परंपरा तो भगवान से भी चली आ रही है। प्रियम प्रीत मना करे स्पृशन, भगवान को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी का हाथ अपने हाथ में लिया। बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, देखो ब्रह्मा जी, तुमने जो तपस्या की है मैं उससे इतना प्रसन्न हुआ हूं कि उससे मैंने आपको ये अपना दिव्य लोक दिखाया है। अब आपको जो वरदान चाहिए वो मेरे से आप वरदान ले सकते हैं। मनीषितानुभावोयम मम लोकावलोकनम, मेरा जो लोकों का दर्शन है, मेरे जो लोक है, मेरे जो धाम है, इनका दर्शन उनको बड़भागियों को मिलता है जिनका मेरे में थोड़ा भी भाव हो जाता है। तो भाई तुम्हारी कोई न कोई इच्छा हो तो बताओ, मेरे लोक का दर्शन, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता। तुमने तपस्या की है, मेरा हृदय तुमने जीत लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सर्वभूतों के अध्यक्ष परब्रह्म परमात्मन, आप मेरे से मेरे मन की बात क्यों पूछे? आप अपने अप्रतिहत ज्ञान के द्वारा मेरे मन की बात को अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करके अपनी वाणी को सफल करता हूं कि मैं सृष्टि के काम में लग रहा हूं। आप मुझे ऐसी शिक्षा देवें कि जिससे मैं सृष्टि को बना सकूं और बहुत ध्यान देवे, ब्रह्मा जी ने साथ में ये भी कहा है कि ये सृष्टि रूप कर्म इतना खतरे का है कि कहीं मुझे घमंड न हो जाए। नेहमान प्रजा सर्गम वध्येयम यदनुग्रहात्, मैं इसमें किसी प्रकार से अनुबंधित न हो जाऊं, फंस न जाऊं, अभिमान न हो जाए, ऐसी आप मुझ पर कृपा करना कि जिस प्रकार से एक मित्र का हाथ मित्र पकड़ता है, ऐसे आपने मुझे सहारा दिया है, तो आप मुझ पर ऐसी ही कृपा कीजिएगा। अब ध्यान से सुनना भाई, भगवान कहते हैं देखो ब्रह्मा जी, मनुष्य कर्म करता है तो उसमें फंसता कब है, जब वह उस कर्म के पीछे विचार नहीं करता है, अज्ञानता से कर्म करता है तब वो कर्म से फंसता है। मैं तुम्हें इतना गोपनीय विलक्षण ज्ञान कहूंगा जो विज्ञान सम्मत है, अनुभव सम्मत है, हर दृष्टि से जो श्रेष्ठ है, वो मैं तुमको ज्ञान देना चाहता हूं। उस ज्ञान को आप बड़े सावधानी के साथ सुने, गृहाण गदितम मया, अब मैं जो कहना चाहता हूं ब्रह्मा जी, उसमें सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है। जैसा मैं हूं, जैसा मेरा रूप है, जैसे मेरे गुण है, जैसे मेरे कर्म है, इन सब का ज्ञान करना मेरी कृपा से बहुत जरूरी है, और मेरी कृपा से मैं ज्ञान करवा भी देता हूं, लेकिन उसके लिए सन्मुख होना आपके हाथ की बात है, ये आप पर छोड़ा गया है। अब देखो ब्रह्मा जी को भगवान चतुश्लोकी भागवत कह रहे हैं, चार श्लोक बताएंगे। अब कहेंगे क्या चार श्लोक में सारी भागवत आ गई, कि हां चार श्लोक में सारी बात आ गई। चार श्लोक में पहला श्लोक परब्रह्म परमात्मा का निरूपण करने वाला है, दूसरा श्लोक भगवान की माया को बताने वाला है, तीसरा श्लोक सृष्टि को बताने वाला है, और चौथा श्लोक जिज्ञासु का स्वरूप बताने वाला है। इस सृष्टि में आया हुआ जीव, जो जिज्ञासु बना हुआ जीव है, उस जीव का स्वरूप बताने वाला है। ये चार श्लोकों में सारी बात आ गई, माने संसार आ गया, परमात्मा आ गए, जीव आ गए और माया आ गई। इन चारों को ही हम लोग घूम फिर करके देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो भगवान इन चारों का रूप बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं। पहले में अपनी बात बताते हैं कि मैं परमात्मा क्या हूं। ध्यान देवे, इसमें अहम पद बहुत बार आया है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चाद अहम यद एतच्च योव शिष्येत सोस्म्य अहम। अहम आदि में भी है श्लोक में, और अंतिम पद में भी अहम है, और एक मध्य में भी अहम है। अब भगवान कहते हैं कि अहम अग्रे अहम आसम एव, अहम एव और आसम एव, इस सृष्टि के पहले मैं ही था और केवल था ही था, माने मेरा जो रूप होनापन है केवल वही वह था, इसके अलावा कुछ नहीं था, न अन्यत। एव लगा दिया तो उसमें सब बात सिद्ध हो गई, फिर भी भगवान न अन्यत करके प्रकृति प्रकृति का लेशांश का भी अभाव बताते हैं कि कुछ भी नहीं था, अहम एव आसम एव न अन्यत, कुछ भी नहीं था, न उस समय में सत था और न असत, माने असत था, न कार्य था न कारण था। यहां सत असत का अर्थ अविनाशी विनाशी ये नहीं लिया जाएगा, सत असत माने कार्य और कारण, कारण असत को बोलते हैं और सत को कार्य बोलते हैं। भागवत में सद असत शब्द की ऐसी कई जगह व्याख्या आएगी। अब कहते हैं कि साहब इसमें कार्य कारण कैसे अर्थ निकलता है, तो कारण होता है वो छिपा रहता है, वो दिखता नहीं है, इसलिए उसको असत बोलते हैं। कार्य होता है वो स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, इसलिए उसको सत बोलते हैं। तो न सत था माने न कार्य था, न असत था माने कारण था, न ही कार्य और कारण से परे जो अज्ञान था वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और पश्चाद अहम, जब ये सृष्टि बन गई तब भी मैं हूं, जहां सृष्टि नहीं है वहां भी मैं हूं, और यद एतत, और जो ये दृश्यमान जगत है, दृश्यमान सृष्टि है,
वो भी वास्तव में ब्रह्मा मेरे से अलावा नहीं, वो मेरे से ही स्फूर्त है, मेरे से ही पैदा हुई हुई है, और जब ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब भी मैं रहूंगा। माने आदि में मैं हूं, अंत में मैं हूं, मध्य में मैं हूं, सृष्टि नहीं है वहां भी मैं हूं, और क्या घूम फिर करके विचार कर लो, केवल मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। ये मेरे विषय में पहली बात सुनो। ये तो भगवान ने ब्रह्म के विषय में बताया, अब माया के विषय में बताते हैं। लोग कहते हैं हमको माया बांध लेती है, भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है। देखो एक माया होती है, एक अविद्या होती है। ध्यान देवे, माया होती है वो दृष्टि व्यामोहिका होती है, और अविद्या होती है वो आश्रय व्यामोहिका होती है। माने अविद्या जिसमें आश्रित रहती है उसको वह मोहित करती है, और माया है वह आश्रय विमोहिका नहीं है, दृष्टि विमोहिका है। जो माया को देखता है वो माया वो ही मोहित होता है। तो माया देखने वाले को मोहित करती है, और अविद्या है अपने आश्रय को विमोहित करती है। भगवद आश्रित जो माया है वो भगवान को मोहित नहीं करती, क्योंकि माया आश्रय व्यामोहिका नहीं है। लेकिन इस माया को जीव देखता है तो देखने वाले को ये माया मोहित करती है, और जीव में अविद्या है, ये अविद्या भगवान से पैदा नहीं होती, जीव से पैदा होती है। तो अविद्या आश्रय व्यामोहिका है, जीव को व्यामोहित करने वाली है, अविद्या दृष्टि व्यामोहिका नहीं है। जैसे माया आश्रय व्यामोहिका नहीं होकर दृष्टि व्यामोहिका है, ऐसे ही अविद्या दृष्टि व्यामोहिका नहीं है, आश्रय व्यामोहिका है। जब ये जीव भी अविद्या को अविद्या की दृष्टि से देख लेता है तब वह अविद्या उसको मोहित नहीं कर सकती। ये बात शास्त्रीय बात है और अच्छी बात भी है। तो भगवान अब यहां माया का रूप बताते हैं कि रिते अर्थम यत प्रतीयत, जीव के अनुसार माया बता रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई हमको भगवान की माया ने ऐसा बांध रखा है, क्या करें, अब कैसे मुक्ति होवे। तो भाई भगवान की माया नहीं बांधती है, भगवान कहते हैं कि जीव स्वयं अपनी माया से फंसता है, मैं क्या करूं। तो वो जीव की माया क्या है कि रिते अर्थम यत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्याद आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमह। दो उदाहरण दिया, एक प्रकाश का और एक अंधेरे का। रिते अर्थम यत प्रतीयत माने वास्तविक तत्व के अलावा जो अवास्तविक वस्तु प्रतीत हो रही है, जो वास्तविक अर्थ की तो प्रतीति न हो और अवास्तविक की प्रतीति होती हो, और वास्तविक की प्रतीति न हो, उसका नाम माया है। हम आकाश में देखते हैं कि चंद्रमा उदित हुए तो चंद्रमा यूं टेढ़े है, और साथ साथ में एक लकीर और दिखती है, तो वो दिखती है लेकिन वास्तव में एक लकीर नहीं होती, वो वास्तव में एक ही है, दो लकीर होती नहीं। तो वास्तव में जो नहीं होती फिर भी दिखती है उसका नाम माया है, और वास्तव में जो है लेकिन फिर भी दिखता नहीं उसका नाम माया है। जैसे आकाश में राहु है, अब बताओ राहु को किसी ने देखा है, नहीं देखा है, राहु देखने में भी नहीं आता है। लेकिन यदि राहु न हो तो सूर्य ग्रहण क्यों होगा, चंद्र ग्रहण क्यों होगा। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण से राहु की सत्ता तो सिद्ध होती है, परंतु राहु का इन नक्षत्रों में ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार से जो वास्तविक परमात्मा है उन परमात्मा का तो ज्ञान नहीं होना, और जो ये जगत सत्य रूप से है नहीं लेकिन ये सत्य के तरह से दिखता है, इसका नाम माया है, इसका नाम भ्रांति है, इसी का नाम अविद्या है, और इसी के कारण से जीव यहां पर भटकता रहता है। तो ये माया का रूप बताया। तीसरा ये जगत का रूप बताते हुए कहते हैं कि यथा महांति भूतानि भूतेषुच्चावतेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार से छोटे जीव जंतु से लेकर बड़े से बड़े जीव ब्रह्मा तक ये पांच भूत सब जगह व्यापक है, समस्त पंच महाभूत इन्हीं से ही बने हुए हैं। अब एक तरह से देखा जाए तो हमारा शरीर क्या है, पंचभूतों का कार्य है अथवा पंचभूत ही है? तो पंचभूतों का कार्य मानते हैं तो जब ये शरीर नष्ट होता है तो क्या उन पांच भूतों में कमी आनी चाहिए? परंतु उनमें कमी नहीं आती, प्रतीत ऐसा ही होता है कि पांच भूतों का ये कार्य है। तो इन पांच भूतों का ये कार्य नहीं है, वास्तव में पांच भूतों वाला ही है। तो प्रविष्टानी अप्रविष्टानी, दिखता तो है कि पांच भूतों से प्रविष्ट माने पांच भूतों से पैदा हुआ है, पांच भूत इसमें आकर प्रविष्ट हुए हैं, लेकिन वास्तव में अप्रविष्टानी वो आकर के प्रवेश नहीं किए हैं, पंचभूत अपनी ही स्थिति में है, अपनी ही जगह है। इसी प्रकार से मैं संसार में हूं और संसार में इस ढंग से हूं कि मैं संसार में नहीं भी हूं, तो हूं भी और नहीं भी हूं, ये क्या है? गीता के अनुसार ही भगवान का ऐश्वर्य है। यदि मैं संसार में हूं तो संसार के नाश से मेरा भी नाश होना चाहिए, तो मेरा नाश नहीं होता है, संसार का नाश होता है। इस दृष्टि से मैं संसार में नहीं हूं, अर्थात संसार से निरपेक्ष हूं, संसार से असंसक्त हूं, और संसार मेरे में ही है, मैं संसार में हूं, अर्थात संसार की स्वतंत्र सत्ता कभी हो ही नहीं सकती है। मैं अपने सत्ता से हूं, ऐसे संसार अपनी सत्ता से हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, मेरी सत्ता से ही ये सत्तावान है, तो मैं संसार में हूं। तो माने संसार की सत्ता दिखती है वो मेरी सत्ता समझनी चाहिए, और मेरा अभाव नहीं होता, संसार का अभाव होता है, इस बात को समझना चाहिए। इस रूप से जगत को समझा दिया। और यहां आए हुए जीव को क्या करना चाहिए कि एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मन, जो तत्व जिज्ञासु है उसको यही बात समझनी चाहिए कि जगत क्या है, मैं क्या हूं, परमात्मा क्या है, यही बात जीव के लिए समझने की है। हम और बातों में अपनी जिज्ञासाएं लगाते हैं, ये जिज्ञासाएं हमारे किसी काम की नहीं, वास्तविक जिज्ञासा है अपने स्वरूप के विषय में समझना, और जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं सृष्टि के विषय में समझना, और सृष्टि का मूल आधार, हमारा मूल आधार कौन है उसको समझना। कैसे समझें जी? कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय माने विधि मुख से समझे और निषेध मुख से समझे। देखो दोनों ही बात आएगी, सृष्टि का परमात्मा को समझना है तो क्या करें, सृष्टि का निषेध करते हुए समझेंगे कि भाई जैसे सृष्टि पैदा होती है ऐसे परमात्मा है कि ना, ऐसे नहीं है। अच्छा, जैसे सृष्टि नाश की तरफ जाती है ऐसे परमात्मा है कि ना, ऐसे परमात्मा नहीं है। ऐसे निषेधता से समझने का नाम व्यतिरेक बुद्धि से समझना, और परमात्मा नित्य है, अविनाशी है, अविच्छिन्न है, अच्छेद्य है, अभेद्य है, अखंड है, अनंत है, अपार है, इस प्रकार से समझना, ये अन्वय विधि से समझना है। तो है रूप से जानना और नहीं रूप से संसार का निषेध करते रहना, इस प्रकार से समझने का नाम है अन्वय व्यतिरेक से समझना। यही परमात्मा सर्वत्र सर्वदा सब काल में मिलेगा, सब देश में मिलेगा और सब जिज्ञासुओं को मिलेगा। परमात्मा सबके हैं, परमात्मा सदा है और परमात्मा सब में है, परमात्मा से खाली कोई चीज नहीं है, इसलिए परमात्मा ही प्राप्त किए जा सकते हैं और कोई प्राप्त नहीं किए जा सकते। न देखो ब्रह्मा, हमने तुमको ये बात बता दी है, एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना, कितना ही ऊंचा ध्यान कर लो, कितनी ऊंची बात जान लो, ये बात जानना बहुत जरूरी होगा, और इस बात को जान लेने के बाद फिर कभी भी मोह होने का प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने उनको ज्ञान दिया, वो ज्ञान लेते ही, ज्ञान सुनाते ही भगवान तो अदृश्य हो गए। अब ब्रह्मा जी इधर उधर आंख फाड़ के रह गए बेचारे, उनको भगवान का फिर ज्ञान नहीं हुआ, अर्थात भगवान ने अपना रूप छिपा लिया, ब्रह्मा जी ने फिर भगवान का ज्ञान तो ले लिया और सर्वव्यापक भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद फिर उन्होंने इस सृष्टि की रचना की, प्रजापति धर्मपति ने तरह तरह से सृष्टि की रचना कर ली। इधर नारद जी को मालूम चला कि हमारे पिता को भगवान के द्वारा बड़ा विलक्षण ज्ञान मिला है, तो मायाम विविदिशन, इस माया को जानने की इच्छा से, भगवान को जानने की इच्छा से उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत सेवा की, पिताजी की बहुत सेवा की, पितरम पर्यतोषयत, ऐसी सेवा की उनको संतुष्ट कर लिया। और संतुष्ट करने के बाद ब्रह्मा जी से उन्होंने भागवत को सुना। ये भागवत 10 लक्षण वाला है, इस 10 लक्षण वाले भागवत को ब्रह्मा जी ने सुनाया और नारद जी ने उसे सुना। वही भागवत सुनकर के नारद जी आए वेद व्यास जी के पास और कहने लगे, वेद व्यास जी, तुम्हारे कोई संतोष नहीं हो रहा है इतने ग्रंथ लिखने के बाद भी, तो औरों को कैसे संतोष होगा, इसलिए तुम भागवत को लिखो। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रेरणा दी और व्यास जी को प्रेरणा दी और वेद व्यास जी ने वही भागवत फिर मुझे पढ़ाया और वही भागवत मैं तुम्हें कह रहा हूं। ये सुखदेव जी महाराज अपने वंश की परंपरा बता रहे हैं। देखो, वंश दो प्रकार का होता है, एक तो शरीरगत वंश होता है, एक शब्दगत वंश होता है। तो ये शब्दगत वंश बता रहे हैं, माने कौन सा शब्द किसके पास आया, उससे आगे के पास गया, उससे आगे के पास गया। तो भागवत में शब्द वंश की बड़ी महिमा है, शरीर वंश तो सभी जीव जंतुओं का चलता ही है। तो इसी नारायणी परंपरा के अंतर्गत आए हुए इस भागवत को सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया है। तो वे परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वह मैं तुम्हें सुनाता हूं, जो तुमने हमको विराट पुरुष के विषय में पूछा था उसके विषय में सुनाऊं, उससे पहले भागवत के 10 लक्षण कर देता हूं। देखो, भागवत में स्कंद तो है 12 और लक्षण किए 10, तो 2 स्कंदों का क्या हुआ, 12 स्कंदों में 10 लक्षण तो सिद्ध हो जाएंगे, एक एक लक्षण से एक एक स्कंद बैठ जाएगा, लेकिन 2 स्कंदों का क्या होगा, तो इन 2 स्कंदों के विषय में बता चुके हैं। तीसरे स्कंद का नाम सर्ग स्कंद है, चौथे स्कंद का नाम विसर्ग स्कंद है, पांचवें स्कंद का नाम स्थान स्कंद है, छठे स्कंद का नाम पोषण स्कंद है, सातवें स्कंद का नाम ऊति स्कंद है, आठवें का नाम मनवंतर है, नवमे का नाम ईशानुकथा है, दसवें का निरोध है, 11वें का मुक्ति है और 12वें का आश्रय है। ये 10 नाम तो रख दिए। अब पहला दूसरा क्या हुआ, तो पहले दूसरे के विषय में बता चुके हैं, पहला स्कंद है वो अधिकारी स्कंद है और दूसरा स्कंद वो साधन स्कंद है। मरने वाले को क्या करना चाहिए, ऐसा जो पूछता है, ऐसा जो जानता है, वो भागवत का अधिकारी है। और ये उपाय जो बताते हैं वो उपाय है, वो साधन है। तो ये साधन और अधिकारी 2 स्कंद पहले दूसरे से हो गए और तीसरे स्कंद से 10 लक्षणों वाला भागवत सिद्ध हो जाता है। कहते हैं सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, कि सर्ग माने सृष्टि के निर्माण में किन किन तत्वों की जरूरत रही है इसको समझना, पंचभूतों को समझना, पंच तन्मात्राओं को समझना, ये इंद्रियां कहां से पैदा होती हैं उसको समझना, बुद्धि कहां से हमको मिली है इस बात को समझना, ये सर्ग स्कंद में बात आएगी।